शांति। आज का हमारा विषय है पतित पावन शिव बाबा की याद। शिव बाबा ने संगम पर आके जो हमें पढ़ाई पढ़ा रहे हैं उसके मुख्य चार सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन उन चार में भी मुख्य क्या है? आज की मुरली में भी बाबा ने कहा ना, तुम्हारी पढ़ाई का मुख्य सब्जेक्ट है याद। क्यों? न सिर्फ ये कहा कि मुख्य सब्जेक्ट याद है और कहा इसलिए तुम मुझे क्या करो, बहुत प्यार से, बहुत लव से, बहुत स्नेह से मुझे याद करो। याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे, याद करेंगे तो पाप कट जाएंगे, याद करेंगे तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, याद करेंगे तो कट उतर जाएगी, याद करेंगे तो जंक उतर जाएंगी, याद करेंगे तो डिफेक्ट निकल जाएंगे। ये बहुत सारी बाबा बातें बताते हैं और विशेष करके आज ये भी कहा कि पतित पावन बाप कहते हैं। आज ये कहा ना विशेष करके कि पतित पावन बाप कहते हैं, तुम पतित हो गए हो, मैं तुम्हें पावन बनाकर पावन दुनिया में ले जाऊंगा। कल भी एक प्रश्न आया था कि बाबा को खेल पाल में याद करते, अर्थात जो बाबा ने कहा है तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग खेलूं, तुम ही संग उठूं, तुम ही संग बैठूं, ये हुआ खेल पाल में बाबा को याद करना। तो प्रश्न क्या था कल कि अगर हम बाबा को इस रीति से याद करते हैं तो क्या इससे विकर्म विनाश नहीं होते हैं? और जवाब हमारी दीदी ने दिया था, क्या कहा था? नहीं होते हैं। और इसलिए याद की भी लेवल्स है अलग अलग, और हमें तो क्या करना है, याद के माध्यम से ही पावन बनना है। और इसीलिए याद के जो अलग अलग लेवल है उन सबका अभ्यास होना चाहिए। खेलपाल वाला तो होता ही होता है, लेकिन उसके साथ वो वाली भी याद हमें समझ में आनी चाहिए जिससे कि सचमुच में हमारी आत्मा की क्लिंजिंग होती है, सफाई होती है, जंक उतरती है, कट उतरती है, डिफेक्ट निकलते हैं। तो ऐसी वाली याद कौन सी याद है? पहले तो हम ये भी समझ ले कि पतित बन गए हैं माना क्या हुआ, क्या है पतित बनने से, और या फिर जब हम पावन थे तो कैसे थे, मतलब क्योंकि बाबा कहते हैं तुम पहले पावन थे, इस सृष्टि चक्र में तुम पतित बन गए हो, और अब ये सृष्टि चक्र पूरा होने को आ रहा है, वापस घर चलना है, और इसलिए जैसे आए थे वैसे वापस बनना है। अगर वैसे वापस नहीं बनेंगे तो घर नहीं चलेंगे, लेकिन घर चलने का समय तो आ गया है, चलना तो पड़ेगा। तो अगर बाबा हमारी सभी टीचर बहने भाई बहने कोर्स तो कराते ही है ना, हाँ क्या कहते हैं इन जनरल में, या तो बोलो बोलो, या तो प्यार से या तो मार से, हाँ सजा खाके। तो ये जो भट्टी का थीम है, महसूसता द्वारा संपूर्णता, तो ये जो आपको यहां समय मिला है हर प्रकार की जिम्मेवारियों से मुक्त होकर सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर मेहनत करने की, वो इसीलिए है कि महसूस करो कौन कौन सी कट, कौन कौन सी जंक, कौन कौन सा पतितपना, कौन कौन सा डिफेक्ट मुझ आत्मा में अभी है। और जब रियलाइज करेंगे और फिर वो बाबा के सामने रखेंगे, तो फिर बाबा मदद करता है, क्योंकि गीता में भी बात आती है और बाबा उसी को सरल शब्दों में बोलता है। गीता में क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। इस सर्व धर्मों को त्याग कर, छोड़ कर केवल मुझ एक की शरण में आ जाओ, तो उससे क्या होगा, मैं तुम्हें तुम्हारे सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम्हें किसी प्रकार की चिंता शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये समय आपके लिए बहुत स्वर्णिम कि सर्वधर्मान परित्यज्यम, क्योंकि यहां पे जब धर्म की बात आती है, कौन से धर्म की बात है, ये कर्तव्यों की बात है, जिम्मेवारियों की बात है, कि जो भी तुम्हारे रोल्स है, जो भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उन सबको एक साइड में रख कर मेरी शरण में आ जा, अर्थात उन सब बातों को अलग करके सिर्फ मेरे पास बैठ जा। मात्र मेरे पास बैठने से, मेरी शरण में आने से मैं तुम्हें सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। कैसे होता होगा ये, कैसे होता होगा ये, कि बस उसके पास बैठ जाए और वो हमें मुक्त कैसे करेगा, ये कैसे मैकेनिज्म होता है। हाँ, दिल मन बुद्धि एकाग्र। चलो, याद की लेवल की जब बातें की तो जो कहा कि खेल पाल करते हुए, या जैसे अभी इसकी पहले की क्लास में बताया गया, लंबी लिस्ट बनाओ 101 विचारों की, नवीनता की। एक साइड क्रिएटिविटी भी हो और एक साइड पूर्ण विराम भी हो। बाबा का पूरा ही ज्ञान, न सिर्फ बाबा का, दुनिया में भी बैलेंस का ही महत्व होता है। आपकी तबीयत खराब हो गई है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर यही कहता है आपकी डाइट बैलेंस्ड नहीं है, आपकी लाइफस्टाइल बैलेंस्ड नहीं है और इस कारण ये सब हो रहा है। बैलेंस का ही बहुत महत्व है। तराजू के दो पलड़े, एक पलड़े में डालते जाओ और दूसरे पलड़े में कुछ नहीं डालो। पहले जब दोनों पलड़ों में कुछ नहीं था, समान लेवल पर थे, लेकिन अब एक में डालना शुरू किया है और दूसरे में कुछ भी नहीं डाला जा रहा है, तो जो समानता थी उसमें असमानता आना शुरू हो गई। पहले थोड़ी सी असमानता, फिर जितने जितने प्रमाण में आप एक में डालते गए और एक को टोटली निग्लेक्ट करके रखा, उतने प्रमाण में असमानता बढ़ती गई, और उसी बढ़ती हुई असमानता ने टेंशन क्रिएट किया। उसका जो तराजू का डंडा है और जो फंसा हुआ है, और उस टेंशन में एक समय पे वो धड़ाम से आके गिरा। ऐसे ही होता है। तो जो एक साइड में रखा था, सोचा था ये मेरे काम की चीज है, जब धड़ाम से आके गिरा, तो जहां पे गिरा वो जो फर्श था या जो कुछ भी था, उसको भी चोट लगी, और वहां जो मिट्टी थी या कुछ भी था जो टूट कर उसके भी टुकड़े टुकड़े हुए वो सब उसमें मिक्स हो गया, तो आपकी जो पसंदीदा वस्तु थी जिसके लिए आपने दूसरे को भी निग्लेक्ट करके रखा था वो आपके काम की रह गई अभी, तो लेने के देने पड़े ना। अब जब इतने समय से मैं इसको जुगाड़ कर रहा था, लंबा समय हुआ, असमानता ज्यादा हुई, टेंशन उसमें गिरा और गिरने के बाद हाथ कुछ नहीं लगा, डिप्रेशन। गिरने के बाद फिर हाथ कुछ नहीं लगा ना, तो लाइफ में आ गया डिप्रेशन। इसलिए हर बात में बैलेंस की बहुत आवश्यकता है। ऐसे ही जहां तक याद का सवाल है, जहां तक बाबा के ज्ञान के चिंतन और मंथन की बात है, बहुत नवीनता, बहुत क्रिएटिविटी, लेकिन फिर उतना ही फिर शांति भी, दोनों का बैलेंस चाहिए। आप दिन भर काम कर रहे हैं, रात्रि में क्या चाहिए आपको? पांचों इंद्रियां काम पे लगा के रखी थी दिन भर, और अब कह रहे एक भी इंद्रिय काम नहीं करेगी। हाँ, थोड़ा सा किसी ने आवाज कर दिया तो डांट लगा दी, आप ये आवाज क्यों कर रहे हो, मेरी नींद क्यों खराब कर रहे हो। सिर्फ एक इंद्रिय को थोड़ा सा हुआ ना, हाथ पैर तो आपके आराम में थे ना, एक इंद्रिय को भी काम में लगा तो आपको क्या लगा उस समय? डिस्टर्बेंस लगी। तो एक तरफ तो पांचों इंद्रियां काम में लगाई थी, लेकिन रात में फिर पांचों इंद्रियों को रेस्ट भी चाहिए, तब कहीं अगले दिन में फिर से पांचों इंद्रियों को काम पे लगा सकती हूं और वो काम को अच्छी तरह से करके जीवन की गाड़ी को अच्छी तरह से चला सकती हूं। तो चिंतन जितना श्रेष्ठ, जितना नवीनता, जितनी क्रिएटिविटी, उतनी ही फिर शांति का भी अभ्यास बढ़ाना है। और इसलिए हमने देखा है कि बाबा ने हमें चार धाम दिए हैं और उन चारों धामों से रिलेटेड अलग अलग श्रीमत है, बाहर हिस्ट्री हाल के बाहर लिखी भी पड़ी है। बाबा के पुराने बच्चों को याद होगा, नए बच्चे शायद सोच रहे होंगे क्या है श्रीमत। हाँ, तो बाबा कहते हैं अगर व्यर्थ चल रहा हो तो हिस्ट्री हॉल में आ जाओ, बाबा के उस हिस्ट्री को याद करना आरंभ कर दो, तो वो जो हिस्ट्री को याद करेंगे वो हो जाएंगे समर्थ विचार। तो व्यर्थ ऐसे नहीं थम रहा था, लेकिन व्यर्थ की दिशा को मैंने क्या कर दिया, समर्थ की दिशा में मोड़ दिया, तो व्यर्थ अपने आप खत्म हो गया। बाबा के कमरे में क्यों बोलता है बाबा आने के लिए? बाप समान बनना है तो बाप के कमरे में आ जाओ। शांति स्तंभ में क्या करने के लिए आओ? शक्तिशाली बनना है तो शांति स्तंभ पर आ जाओ। और कुटिया में हाँ, मन कहीं उदास हो गया है, कुछ ऐसी बातें हैं, बर्डन लग रहा है, बोझ लग रहा है, उदासी आ गई है, मेरे सामने आकर अपना दिल खोल लो, रूह रिहान करो मेरे साथ, तो उदासी क्या हो जाएगी, भाग जाएगी। लेकिन परमधाम में आके क्या करने के लिए बोलता है? शांति। जहां परमधाम की बात आती है, बाबा कहते कुछ नहीं करो, परमधाम में आके मेरे साथ आके बैठ जाओ। एक ये कहता है, और दूसरा अगर इसमें एडिशन करता है बाबा, तो वो एडिशन ये रहती है, परमधाम में आकर बाप समान बीज रूप स्थिति में रहकर विश्व को सकाश तो बीज रूप स्थिति में रहकर, कंबाइंड स्टेज में रहकर बहुत ज्यादा बातें करने की बातें परमधाम के लिए नहीं कहते हैं बाबा। तो एक तरफ रूहरियान भी करने के लिए कह रहे हैं और एक तरफ साइलेंस का भी इम्पोर्टेंस बता रहे हैं। अब हम पतित बन गए हैं, उसको हमें पावन बनाना है। मतलब करना क्या है उसको, पतित को पावन बनाना मतलब करना क्या है? हम पतित बन गए मना क्या? आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, कहीं गांठ महसूस हो रही, कहीं दर्द महसूस हो रहा है, तो डॉक्टर पहले तो स्कैनिंग करवा देता है और उससे वो एक्सरे फिल्म वगैरह जो आती है, अच्छा आपके अंदर में ये गांठ है, इसको निकलवाना पड़ेगा। कैसे निकलवाएंगे? तो कहा सर्जरी करनी पड़ेगी, सर्जरी की डेट निकलेगी, उस दिन के भी नियम होंगे, खाली पेट आना, ऐसा करना वैसा करना, और फिर सर्जरी वो आरंभ करे उससे पहले आपको क्या करेगा? वो बेहोश करेगा। क्यों करेगा बेहोश? क्योंकि सर्जरी में उसे काट पीट करनी है और वो काट पीट का दर्द आपसे सहा नहीं जाएगा, आप उछल पड़ोगे, उसकी कैंची इधर की उधर लग जाएगी, वो सर्जरी कर ही नहीं पाएगा, लेने के देने पड़ जाएंगे, एक बीमारी के दूसरी चढ़ा के आ जाएंगे। होगा या नहीं होगा? तो आप समझ रहे हैं कि शांति का इंपॉर्टेंस का क्यों है। तो एक डॉक्टर को भी आपके अंदर वो चीज आ गई है जो आपके शरीर के लिए उपयुक्त नहीं है, उसको वहां से निकालना है, सर्जरी करना है, तो आपको उसे शांत करना पड़ता है एनेस्थीसिया देकर। अब भगवान को भी हमें पावन बनाना है तो उसको भी क्या करना पड़ेगा हमें? और वो एनेस्थीसिया वाला स्थान है परम धाम, कि आप सिर्फ चुपचाप रहेंगे, जो कुछ करना है मैंने करना है। तब का सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सब कुछ भुलाकर सिर्फ मेरे पास आ जा और कुछ भी सोचना नहीं है। इस लेवल की याद यथार्थ साधना, एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने डेफिनेशन दी है। यथार्थ साधना माना क्या? शक्तिशाली याद। और शक्तिशाली याद की डेफिनेशन में क्या कहा उन्होंने? बाबा कहते हैं जैसे शरीर को आप याद करना है, बाबा की याद में बैठना है, तो शरीर को बिठाया ना एक जगह पे, तो जैसे शरीर को स्थिर करते हो ऐसे मन को भी स्थिर करो, बुद्धि को भी स्थिर करो, दिल को भी स्थिर करो। तो चारों ही जब स्थिर हो जाए उसको कहते हैं शक्तिशाली याद। क्यों? क्योंकि उस स्थिरता में ही परमात्मा आपकी सर्जरी कर सकता है। और जो इतने जन्मों की कट चढ़ी हुई है, जंक चढ़ी हुई है, वो यूं पलों में उसको उखाड़ के फेंक सकता है। तो इतनी शांति की आवश्यकता होती है और इसीलिए योग तपस्या भट्टियों के आयोजन है कि लौकिक में रहते हैं या सेंटर में रहते हैं, क्योंकि सेंटर भी एक बहुत बड़ी प्रवृत्ति है, हमारे बहुत सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। थोड़ा भी समय बैठते हैं याद में तो कोई ना कोई एक रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी टपक पड़ती है और हम याद से उठ जाते हैं और उसके बारे में सोचना आरंभ करते हैं। और इसलिए बाबा ऐसे आपको सुंदर अवसर दे रहे हैं कि बच्चे आओ बाप के घर में और आकर के हर प्रकार के रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त होकर सिर्फ तपस्या में लग जाओ। तपस्या वाले जीवन बनाओ। साइकिल चलानी होती है पहली बार तो भीड़ वाली सड़क पे चलाएंगे क्या? पहले तो खाली सड़क, और एक बार एक्सपर्ट हो गए तो गहरी तपस्या को समझना, अनुभव करना, हर प्रकार के रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त होके यहां समझो, अनुभव करो, महसूसता लाओ, अभी भी कितने परिवर्तन की मुझे आवश्यकता है। जब तक ये महसूसता नहीं है तब तक पापों से मुक्ति नहीं है। ये जो कहा ना, या तो प्यार से या तो मार से, ये मार वाला शब्द क्या है? बाबा कहते मैं साक्षात्कार कराऊंगा, और उस साक्षात्कार में आप भोगोगे, उस पीड़ा से तुम गुजरोगे, और उस दौरान आप रियलाइज करोगे। मतलब रियलाइजेशन के बिना क्लीनिंग होने वाली नहीं है, ये बात पक्की है। बिना रियलाइजेशन के कि मेरे में ये खामियां है, मेरे से ये गलतियां हुई है, जब तक हम ये बात रियलाइज करके बाबा के सामने रख के पूर्ण अपने आप को समर्पण नहीं करते, तब तक क्लींजिंग पति से पावन हम नहीं हो सकते। अजामिल जैसा पापी भी, शास्त्रों में कहानी आती है ना कि अजामिल जैसा पापी भी पापों से मुक्त होकर भगवत धाम में पहुंचा, पर कैसे कैसे पहुंचा? कहा कि बेटे का नाम रखा था नारायण, और वो जो बेटा हुआ था बुढ़ापे की अवस्था में हुआ था, और तब काल भी आके पहुंच गया उसके पास, यमदूत आके उसको लेके जाने के लिए तैयार। हमें बाबा ने ज्ञान तो दिया है ना, एक होता है स्थूल शरीर, एक होता है सूक्ष्म शरीर। काल जब आता है किसको लेके जाता है? आत्मा को सूक्ष्म शरीर के साथ खींच के लेके जाता है, अर्थात सूक्ष्म शरीर इस स्थूल शरीर से अलग होता है। और कहते हैं दो यातनाएं सबसे बड़ी यातनाएं होती है, एक जन्म लेने की, मां के गर्भ से जब बाहर आ रहा है बच्चा वो जबरदस्त पीड़ा होती है, और दूसरी पीड़ा होती है आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ स्थूल शरीर से जब जाती है, अर्थात मृत्यु, जबरदस्त पीड़ा होती है। तो उस समय जब उसको ले, उसका समय आ गया इस स्थूल शरीर से अलग होकर देह त्याग करने का, तो उसको ऐसे यमदूत दिखाई पड़े कि वो मुझे लेने के लिए आ गए हैं। और चूंकि नारायण बेटे का नाम था, बुढ़ापे में हुआ था, तो हर बात में नारायण नारायण कहता था, तो जब पीड़ा उसके अनुभव हुई जबरदस्त, तो उसने नारायण को ही पुकारा। कहानी इन जनरल जो बताते कि नारायण पुकारा तो सोचा कि भगवान को याद किया और तर गया, बात ऐसी नहीं है। आजकल कहानियों की गुह्यता भी लोग भूल चुके हैं, वो सिर्फ नारायण नाम से नहीं हुआ है, बल्कि वो नारायण नाम जब उसने उठाया है तो यमदूत जो आए थे उसी समय, क्योंकि पहले तो वो ब्राह्मण था, अजामिल सदाचारी था, सुशील था, ज्ञानी था, पंडित था, विद्वान था, ये तो कोई उसके पूर्व जन्मों का, कहते ना पापों के बीज कहीं पानी मिलते ही उगाते हैं। वन में गया था लकड़ी लेने और देखा ऐसा सीन, किसी को कामुकता वाला, और घर आया तो वही ख्याल चलने लगे, उसके पीछे पड़ गया और इस प्रकार से उसकी जीवन बाद में नरक में बन गई। इसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी अभी, परंतु था तो वो सुशील सदाचारी, मतलब उसके जीवन में पुण्य का भी संचय था। और उस घड़ी में क्या हुआ है? कहते ना, अगर आपके पास पुण्य होंगे तो पुण्य आपको समय पर मदद भी करने आएंगे। तो उस समय उसके पुण्य जो संचित थे उसका भी उदय हुआ। किस रूप में? विष्णु दूत भी दिखाई पड़ गए, इधर से यमदूत है और इधर से विष्णु दूत, और दोनों में संवाद चल रहा है। विष्णु दूत उसे रोक रहे हैं और वो यमदूत कह रहे, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? भगवान ने ये नहीं कहा कि मुझे याद करो, ये सिर्फ उसके सामने सीन क्रिएट हुई है। और ऐसी सीन आते ही उसको पूरा रियलाइजेशन हो गया। पहले ज्ञानी तो था ना, मेरी क्या ज्ञान वाली जीवन थी पहले, मेरे जीवन का लक्ष्य था मनुष्य से देवता बनने का, और मैं कहां नरक में पड़ गया। और वो दिव्यता वापस उसकी जागी है, उसने रियलाइज किया कि मैं गलत मार्ग पर चल पड़ा। वही मन ही मन उसने भगवान से अपनी गलतियां कबूल की और अपने आप को समर्पित किया, और उस समर्पण का रिजल्ट आया कि वो साक्षात्कार कुछ समय के बाद उसका टल गया, लेकिन अंदर में गहरी छाप छोड़ के गया कि मैं बहुत गलत रास्ते पे चल पड़ा था, ये लक्ष्य नहीं था मेरे जीवन का। मेरे जीवन का लक्ष्य तो था मनुष्य से देवत्व की ओर जाने का, और वो चूंकि भगवान के सामने कबूल करके अपने आप को समर्पित किया, भगवान ने उसे वो शक्ति प्रदान की। और तब कहते वो फिर हरिद्वार, उसी समय नहीं मरा है वो नारायण कहकर। आजकल तो कहा ना, मोटी मोटी कहानियां सुना देते, क्योंकि उनको भी पता है लोगों में उतनी ताकत भी नहीं रह गई, उनको तो कहानी और ये सुन के टाइम पास करके निकल जाना है, तो वो भी देखते हैं किस प्रकार के श्रोतागण है, वैसा सुना के चले जाते। पर गहराई तो वास्तव में उस कहानी का संदेश तो ये है, रियलाइजेशन। और तब कहा कि रियलाइजेशन किया तो ऐसा अजामिल जैसा पापी भी अपने पापों से मुक्त हो सका और भगवत धाम में पहुंच गया। तो ये रियलाइजेशन के लिए ये योग तपस्या भक्ति, इसीलिए हमने आपको एकांत का समय दिया। 5 से 6 कमेंट ही नहीं कराई हमने आपको, बाबा की ड्रिल जरूर दी कि एकांत के पलों में ही तो रियलाइजेशन करोगे आप। कब करोगे? ऑलरेडी कोई आपको थॉट देते जा रहा, रियलाइजेशन कब करोगे? देखो, जब मैं खाना खा रही हूं उस समय मैं उपवास कर सकती हूं क्या? जब मैं गुस्सा कर रही हूं उस समय गुस्सा का कंट्रोल होता है क्या? वो तो गुस्सा हो जाने के बाद जब मैं शांत बैठती हूँ, परिस्थितियां बिगड़ती है और शांति के पलों में सोचती हूँ मैंने ऐसा क्यों किया, है अनुभव सबको ऐसा? वो तो शांति के पलों में रियलाइज करते हो ना, उस समय थोड़ी रियलाइज करते हो। ऐसी शांति का इतना महत्व है, और इसीलिए हमने आपको शांति का टाइम दिया, इसीलिए हमने आपको कहा फरिश्ते बनकर चलो। और क्या हो रहा है उन बातों से मुझे कोई मतलब नहीं, मैं अपने जिम्मेवारियां अपने रोल छोड़कर आया हूं यहाँ पे, खास किस लिए? अपनी उन्नति के लिए, आत्म उन्नति के लिए, पतित से पावन बनने के लिए, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए, तो शांति का महत्व बढ़ाना है जीवन में। आप यहां से जाने के बाद लक्ष्य रखें सप्ताह में एक बार, या तो 15 दिन में एक बार, या तो महीने में एक बार संपूर्ण मौन, क्योंकि उन मौन के पलों में ही आप स्वयं से बातें करोगे। पहले ही दिन कहा कि लोग कहेंगे इतना मौन करेंगे तो सिर दर्द नहीं होगा, लेकिन मौन कहाँ का? बाहर का। अंदर तो रियलाइजेशन के लिए अपने आप से बातें करनी है, प्रभु पिता से बात करनी है, और वो रियलाइजेशन के बाद समर्पण करके, समर्पण माना क्या होता है? समर्पण माना क्या, अपना चलाना होता है क्या? कुछ कुछ नहीं। तो जो कहा कि परमात्मा कहते हैं कि परमधाम में आकर मेरे पास बैठ जाओ, वो कैसे होता होगा? कैसे सर्जरी करता होगा वो हमारी? देखो मैं आपको थोड़ा साइंटिफिक वे में बताती हूं। कहते हैं ये संगीतज्ञों का अनुभव है ये, कि एक कमरा है, खाली है, बंद है, एक कोने में एक वीणा रख दी, दूसरे कोने में दूसरी वीणा रख दी। अब एक वीणा को उस संगीतज्ञ ने तारों को छेड़ा तो स्वर लहरियां उत्पन्न होगी, वह स्वर निकलेगा, और स्वर लहरियां चूंकि हाल कमरा खाली भी है, बिना रोक टोक के वो वाइब्रेशन क्या होंगे? आगे बढ़ेंगे ना। वो आगे बढ़ते बढ़ते वो दूसरे कोने में जो वीणा रखी हुई है उसके तारों को क्या करते हैं? वो छेड़ देते। वहां तो संगीतज्ञ ने फिजिकली अपने उंगलियों से तारों को छेड़ा, पर इसको कौन छेड़ रहा है? वहां से निकले हुए वाइब्रेशन गमन करते हुए यहां तक पहुंचे हैं और उसने इसको छेड़ा और ठीक वैसा ही स्वर निकला जो वहां से निकला था। ये सच्चाई है। दूसरी बात, ये 150-250 साल पहले की बात है, सच्ची घटना है कि एक राजा ने एक वैज्ञानिक को अपने यहां निमंत्रण दिया था मेहमान के रूप में। राजा क्या गया, राजा माना किले, और किले माने शहर से दूर होते हैं, और माना वहां शांति बहुत होती है। राजा ने उस मेहमान को एक कमरे में ठहराया। कमरे में रात में इसका ध्यान गया दीवाल पर लगी घड़ियों पर, 2 घड़ियां लगी हुई थी दीवाल पर, और 150-250 साल पहले की बात है, मतलब पेंडुलम वाली घड़ियां होती थी पहले। तो जब उसने ध्यान से देखा घड़ी को, उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। क्या देखता है कि दोनों के पेंडुलम की पोजीशन डिट्टो है, दोनों का सेकेंड काटा सेम पोजीशन पर है, मिनट काटा भी सेम पोजीशन पर, घंटे का काटा भी सेम पोजीशन पर। इसको बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसे कैसे, मामूली सा भी अंतर नहीं, आज देखो इतनी घड़ियां लगी हुई है, होता है थोड़ा थोड़ा अंतर सब में। तो उसको आश्चर्य हुआ, ऐसे कैसे, मामूली सा भी अंतर नहीं दोनों में। और चूंकि वैज्ञानिक था तो वैज्ञानिक माइंड चलने लगा, सोचता है ये संयोग है या फिर इसके पीछे कोई विज्ञान काम कर रहा है। तो क्या किया उसने ये पता करने के लिए कि ये संयोग है या विज्ञान है? एक घड़ी को जानबूझकर स्टॉप किया, बंद करते हैं घड़ी को, सेल निकाल देते हैं तो रुक जाएगी ना, रोक दिया घड़ी को। तो जाहिर है जब सवेरे उठा तो दोनों घड़ी में अब अंतर दिखेगा, क्योंकि एक तो रुकी हुई है और दूसरी चल रही है। और चूंकि ये तो उसको स्टडी करनी थी ना, अध्ययन करना था ना, तो अब सवेरे जब उठा और उसने अंतर जब देखा, वापस उसने क्या किया, बंद वाली घड़ी को फिर से चालू किया। और जब चालू किया तो टाइम सेट करना पड़ेगा, तो जब टाइम सेट किया जानबूझकर 4-5 मिनट का अंतर रखा, क्योंकि उसको यही तो अध्ययन करना था कि ये संयोग है या ये विज्ञान है। तो उसने 4-5 मिनट का अंतर रखा और उसका ध्यान जाता था, देखूं क्या ये फिर से उतना ही बराबर समय पे आ सकती है दोनों घड़ियां। और इसके आश्चर्य का ठिकाना फिर नहीं रहा जब 24 घंटे होते होते उसने देखा दोनों एक जैसा समय दिखा रही है। दोनों में अंतर था लेकिन 24 घंटे होते होते दोनों एक जैसा समय दिखा रहे हैं। अभी ये समझ गया कि ये संयोग नहीं है, इसके पीछे कोई विज्ञान है। और वैज्ञानिक तो था ही, आया था एक तो रात के मेहमान बनकर, लेकिन कहते हैं पूरा 1.5-2 मास रहा जब तक कि उसका ये अध्ययन पूरा नहीं हुआ। और अध्ययन के नाम पर इसने क्या किया, क्योंकि रात में ही शांति बहुत होती है, और जो दो घड़ियां लगी थी ना उसमें एक छोटी थी एक बड़ी थी साइज में, तो ये क्या करता था, वो बड़ी वाली घड़ी के पास जाकर ऐसे कान लगाता था और घड़ी की जो टिक टिक होती रहती है तो वो महसूस करता था कि ये टिक टिक के साथ वाइब्रेशन, वाइब्रेट होते हुए गमन कर रहे हैं और गमन करते हुए दूसरी घड़ी तक पहुंच रहे हैं और उसको प्रभावित करते हैं, और ऐसा लगातार हो रहा है और प्रभावित करते करते दोनों का टाइम एक जैसा हो जाता है। और उसने इसको नाम दिया हारमनी, तालमेल, सामंजस्य। कहते ना आपस में हारमनी बिठाओ, तालमेल रख के चलो। तो बड़ी घड़ी ने क्या किया, छोटी घड़ी को अपने ताल से मेल कराया, अपने तालमेल में लेकर आई। तो ये बात यहीं पे रह गई, लेकिन बाद में कहते हैं 50-75 साल पहले, अभी एक होते हैं फिजियोथेरेपिस्ट और एक होते हैं साइकोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट बॉडी की थेरेपी करते हैं, साइकोथेरेपिस्ट मन की थेरेपी करते हैं। तो साइकोथेरेपिस्ट जो थे उनका नाम था कार्ल गुस्ताव जुंग। उसने इसकी सिस्टमैटिक स्टडी की, और सिस्टमैटिक स्टडी का मतलब है साइंटिफिक वर्ल्ड में थ्योरम बनाना, ये बनाना, वो पूरा सिस्टमैटिक होता है ना स्टडी, पूरा डॉक्यूमेंटेशन करना, वो सब सिस्टमैटिक किया। और अल्टीमेटली इसको नाम दिया गया सिंक्रोनिसिटी। और ये शब्द आजकल जो स्मार्टफोन यूज करते हैं, सिंक्रोनाइज कोई नया शब्द नहीं है। कहते हैं ना वो नंबर सिंक्रोनाइज करना है, ये करना है, वो करना है, मतलब तालमेल बिठाना है। और कंक्लूजन क्या निकाला गया कि ये सिंक्रोनिसिटी का जो लॉ है, जो नियम है, जो सिद्धांत है, वो सिर्फ वीणा के केस में लागू नहीं होता है, वो सिर्फ घड़ियों के केस में लागू नहीं होता है, लेकिन जीवन के हर डायमेंशन पर लागू होता है। जीवन के हर आयाम पर सिंक्रोनिसिटी का लॉ लागू होता है। अब यही वाला लॉ जो बाबा ने कहा, आ जाओ परम धाम में और कुछ नहीं करो, मेरे पास आके बैठ जाओ। तो जब हम उसके पास जाके बैठ जाते हैं, शरीर भी स्थिर है, मन भी स्थिर है, बुद्धि भी स्थिर है, दिल भी स्थिर है, ऐसी स्थिरता के साथ जब हम उसके सामने बैठे हैं, वो तो क्या है, पावर हाउस है। हाँ, उसका टाइटल है पतित पावन। कैसे करेगा पतित पतितों को पावन, देखो अभी वो पावर हाउस में से, पावर हाउस माना जहां जनरेट होता रहता है और सप्लाई होता रहता है, पावर हाउस का यही काम होता है। तो जब आप उसके सामने जाके बैठे हैं, उसमें से जो जनरेट हो रहा है और जो सप्लाई हो रहा है, वो वाइब्रेशन क्या हो रहे हैं, आपके पास पहुंच रहे हैं। और आपके पास पहुंच कर, चूंकि आप बहुत शांति की अवस्था में हैं, कहा ना, एक डॉक्टर भी सर्जरी करने में सफलता तभी प्राप्त करेगा जब आपकी बॉडी एकदम शांत होगी, और उसके लिए वो आपको एनेस्थीसिया दे देता है। तो इतनी शांति में जब वहां होंगे, तो वो जो वाइब्रेशन बाबा के निकल रहे हैं, वो हमारे पास आएंगे। और जैसे घड़ी के वाइब्रेशन ने क्या किया, दूसरी घड़ी को अपने साथ सिंक्रोनाइज किया ना, मैचिंग करवाया ना, तो बाबा भी क्या करता है, वो वाइब्रेशन हमारे पास भेज भेज कर जंक को तो उखाड़ फेंकता है। और अगर जंक निकल गई तो ओरिजिनल लोहा तो दिखता है ना, फिर दिखता है, नहीं दिखता है। ये रुमाल है, इसके फैब्रिक में सफेद और पर्पल कलर का धागा है। इसके फैब्रिक में कौन सा धागा है, सफेद और पर्पल, तो ये उसका फैब्रिक है। लेकिन अब इसके ऊपर धूल मिट्टी चढ़ गई तो क्या होगा, वो सफेद कलर दिखेगा, वो पर्पल कलर दिखेगा। तो जब ये सफेद कलर, पर्पल कलर जो इस रुमाल का फैब्रिक है, ये दिखना बंद हो जाए, मैला कहलाएगा ना। ऐसे ही आत्मा का फैब्रिक क्या है, क्या पढ़ा था पहले दिन के लेसन में, आत्मा के ओरिजिनल सात संस्कार, ये आत्मा का फैब्रिक है। समझ में आया। लेकिन आज की डेट में क्या हो रहा है, दिख रहा है क्या, मटमैला हो गया ना। सदाई कह रहे अशांति है, सदाई कह रहे उसको देखती हूं ना घृणा आती है मुझे, अरे मेरे जीवन में एक के बाद एक परिस्थिति आ रही है, मैं तो टूट गई हूं बहुत, कह रहे ऐसे। तो कहां गया फैब्रिक मेरा, मेरा फैब्रिक तो यही था ना, शांति वाला, मेरा फैब्रिक तो प्रेम वाला था, मेरा फैब्रिक तो शक्ति वाला था, मेरा फैब्रिक तो आनंद वाला था, मेरा फैब्रिक तो ज्ञान वाला था, वो तो है ही नहीं अभी। तो जब ये अशांति आ गई उसके ऊपर, घृणा आ गई, नफरत आ गई, अज्ञान आ गया, इसको कहा आत्मा पतित हो गई। और जब ये इसको मैं धो के साफ करूंगी तो ओरिजिनल फैब्रिक दिखेगा ना, उसको कहेंगे आत्मा पावन हो गई। तो परमात्मा की वो वाइब्रेशन हमारे पास आके वो ऊपर वाला जो पतित पना वाला जो चढ़ा हुआ है उसको ब्लो आउट कर देता है, वो भस्म हो जाता है। कहते हैं ना योग अग्नि में भस्म, और इस तरीके से उसकी जो फ्रिक्वेंसी है, जिस अवस्था में परमात्मा खुद है, सच्चित आनंद है ना वो, मुझे भी उस सत्य वाले स्टेज पे पहुंचा देता है। उस घड़ी में जो टाइम था उसने छोटी वाली घड़ी को भी उसी टाइम पे पहुंचा दिया। और इसीलिए तो कहते हैं बाबा कि मैं तुम्हें अपने समान बनाने आया हूं, क्योंकि ओरिजिनल फैब्रिक मेरा वही है जो बाबा का है। इसीलिए तो कहते हैं ना गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, जैसा बाप है वैसे बच्चे हैं, परंतु हमने रंगमंच पर आकर कर्म किए और उस कर्म क्षेत्र में आकर सत्चित आनंद जो मेरा भी स्वरूप है, सत माना क्या, सत माना क्या बोलो, सत माना क्या, जो शाश्वत है, हम वही कहते हैं ना जो तीनों कालों में बरकरार है, जिसका अस्तित्व एक काल में है दूसरे काल में है उसको सत्य कहेंगे, लेकिन जिसका अस्तित्व तीनों ही कालों में अर्थात सदा सर्वदा बना रहता है, जिसको ही शाश्वत शब्द दिया जाता है, वो है सत्य। तो मैं हूं शाश्वत, लेकिन इस जर्नी में सृष्टि चक्र में जब मैं आती हूं, शरीर रूपी वस्त्र पहनती हूं, जर्नी में यात्रा में आगे बढ़ते बढ़ते शाश्वत की महत्ता मेरे जीवन से कम क्षणिक की महत्ता बढ़ जाती। देह क्षणिक है, इसकी महत्ता बढ़ गई, समझ में आ रही बात। तो जो मेरा ओरिजिनल फैब्रिक है उससे हटकर अगर मेरे जीवन में कुछ आया, वही पतित पना है, वही उसके ऊपर मिट्टी है, वही उसके ऊपर धूल है, वही उसके ऊपर कट है, वही उसके ऊपर जंक है, वही पाप है, वही पाप है। लेकिन मेरे फैब्रिक से मैच खाता हुआ है तो वो पुण्य है, वो पावनता है। तो मैं सत्य हूं, शाश्वत पर मेरा अटेंशन होना चाहिए, पर मेरा अटेंशन शाश्वत से निकलकर क्षणिक पर आ गया। क्षणिक है, दूसरा है चित्त। चित्त माना चैतन्य, चैतन्य माना सिंपल करते जाओ तब प्रैक्टिकल लाइफ में आएगा, वरना वो सिर्फ शब्दों में ही रह जाता है। मैं सच्चिदानंद हूं, पर क्या हूं सच्चिदानंद हूं मानता मतलब क्या होता है चित्त, मतलब चित्त, हाँ हाँ, चित्त माना चैतन्य, चैतन्य माना ज्ञान, और ज्ञान माना ही होश। कोई व्यक्ति गिर गया, अरे वो बेहोश हो गया, क्या मतलब होता है बेहोश का, उसको अपने आप का ही ज्ञान नहीं अभी, यही हुआ ना। तो मेरा स्वभाव, मेरा फैब्रिक चित्त का है होश में रहने का अपने प्रति, लेकिन मैं अपने प्रति अब बेहोशी में आ गया ना, द्वापर से तो बहुत बेहोशी आई, हम भूल गए ना अपने आप को, तो बेहोशी वाला जीवन है ना, अपने आप में ये पाप है। और इसीलिए बाबा की परिभाषाओं के अनुसार द्वापर से हर कर्म तुम्हारा पाप कर्म है, यही कहते हैं बाबा मुरलियों में, हर कर्म तुम्हारा पाप कर्म है। क्यों, क्योंकि बेहोशी, कौन सी बेहोशी, मैं जो हूं उसको भुला के बैठी हूं, स्वयं की बेहोशी में कर्म कर रही हूं, पाप है सारा। और तीसरा आनंद, आनंद माना क्या, आनंद माना क्या, नंद घर आनंद भयो जय, क्या कौन सा गीत गाते हैं? अच्छा एक गीत गाते हैं ना भक्ति मार्ग में, नंद घर कुछ तो भी ऐसे बोलते, आनंद भयो ऐसे ना, आनंद का जन्म हुआ है। क्या होता है आनंद? जब हम सुख के ही उलझन में नहीं है और दुख के भी, सुख के भी तो उलझन में रहते हैं हम लोग, ये वाला तकिया रखेंगे ना तो ठीक रहेगा, नीचे वो रखेंगे ना तो ठीक रहेगा। तो जब हम सुख की उलझन से भी परे हैं और दुख की उलझन से भी परे हैं, वो है आनंद की स्थिति। लेकिन हम या तो सुख की उलझन में उलझे हुए हैं या तो दुख की उलझन में उलझे हुए। तो जो मेरा फैब्रिक है आत्मा का, सत चित आनंद, उससे काफी दूर हूं तो पतित हो गई ना मैं तो। और भगवान क्या करता है, बाबा क्या करता है? तो जब मैं इतनी शांति अवस्था में परम धाम में जाके बैठती हूं तो वो तो तैयार है सर्जरी करने के लिए, पर सर्जरी के लिए आप शांत होते ही नहीं हो। भी डॉक्टर कहे सर्जरी कराना है तो अब मैं एनेस्थीसिया की इंजेक्शन ही नहीं लगाने देती हूं तो कर सकेगा? तो इसलिए जीवन में जितना ही क्रिएटिविटी उतना ही शांति की भी अवस्था, क्योंकि उस क्रिएटिविटी का जन्म भी उस शांति से ही होगा। बाबा कहते हैं ना, ये जितनी भी साइंस निकली है कहां से निकली है? साइलेंस से तो निकली है। अगर साइलेंस ना हो तो साइंस की शक्ति भी जन्म न ले। तो इतना महत्व है शांति का। इसलिए पतित पावन शिव बाबा की याद जब हम करते हैं तो ऐसी वाली याद को अब हमें प्रायोरिटी देने की जरूरत है। वरना हमने आज दिन तक यही समझ लिया, खेलपाल करते हुए बाबा को याद करेंगे, गीत सुनते हुए बाबा को याद करेंगे, कमेंट्री सुनते हुए बाबा को याद करेंगे, हो जाएगा सब कुछ। लेकिन अनुभव कहता है वर्षों से ये करते आए हैं, लेकिन फिर यही प्रश्न हम बहन जी और भ्राता जी और दीदी जी और भाई जी से यही पूछते हैं, वही पूछते हैं ना प्रश्न। तो इतनी गहरी याद हमें करनी है। और ये वाली याद मैं समझती हूँ कि बहुत लंबे काल की नहीं होगी। वैसे भी सर्जरी कितना समय होती है, कितना समय होती है? सर्जरी के बाद मेडिकेशन का भी पीरियड ज्यादा होता है, परंतु सर्जरी का टाइम कितना होता है? और आजकल जो आंख का भी कराते हैं ना, वो तो बोलते 8 मिनट भी नहीं लगे थे उसको सर्जरी में, इतना फास्ट होता है। तो ऐसे ये वाली शांति कि पल भले कम भी हो सकते हैं, हम उसमें ज्यादा लंबा ना भी टिके, पर जितना भी टिके उसमें सर्जरी होगी जरूर, उतनी सफाई जरूर होगी। तो आज भी आपके पास वक्त है 5 से 6 का टाइम, इतनी पावरफुल याद रियलाइजेशन के साथ जो कहा ना उसने, रियलाइज किया जा मिलने, रियलाइजेशन के बाद समर्पण, और समर्पण माना ही सब तरीके से स्थिर, अपना कुछ नहीं चलाना है, बुद्धि भी नहीं चलानी, मन भी नहीं चलाना है, शरीर भी नहीं चलाना है, दिल भी नहीं चलाना है। तो यहां से प्रश्न था, क्या प्रश्न था बोलो? हाँ, बुद्धि की स्थिरता तो समझ में आ गई, दिल की स्थिरता क्या? देखो मन का काम क्या है, संकल्प या विकल्प। और विकल्प का अर्थ क्या होता है पता है? कई बार एक ही मीनिंग पता होती है, जो बाबा भी कहते हैं तो हम कई बार सोचते नेगेटिव, पर विकल्प हमेशा भी नेगेटिव नहीं होता है। ऑप्शंस, तो एक ही बात आती है, संकल्प विकल्प चलाता है, मतलब ऑप्शन क्रिएट करते रहता है ऐसे। अब जैसे समझो जाना है, फ्लाइट से जाऊं, गाड़ी से जाऊं, बाय रोड जाऊं, ये सब क्या है? ऑप्शन है ना, इसको विकल्प कहेंगे। तो मन की स्थिरता माना अब संकल्प विकल्प को विराम। बुद्धि की स्थिरता का मतलब, बुद्धि का काम क्या है? या तो संशय करेगी या तो निश्चय करेगी। तो न संशय न निश्चय, हो गया बुद्धि का विराम। और शरीर का काम क्या है? इंद्रियां लगी पड़ी रहेगी, आंख देखेगी, कान सुनेगा, हाथ चलेगा, पांव चलेगा, इन इंद्रियों को भी स्थिर विराम दे दो। आंखों से देखना नहीं इस दुनिया का, आंखों से सुनना नहीं इस दुनिया का, समझ में आया? इंद्रियों को विराम। और जहां दिल की बात आती है, दिल क्या करता है? दिल क्या करता है? पहले काम पता होना चाहिए ना, उसका काम क्या है, दिल क्या करता है। या तो अच्छी भावना क्रिएट करेगा या तो बुरी भावना क्रिएट करेगा, भावना ही क्रिएट करेगा ना। तो अच्छी भावना के साथ तो मैं पहले इस यात्रा पे चल पड़ी हूं ना, और उसके बाद समर्पण, अब रेस्ट में हूं मैं, अब आपको जो करना है करो। हमको पहले विश्वास हुआ ना डॉक्टर पे कि डॉक्टर जो कह रहा है मुझे उस अनुसार करना है। पहले तो मैं खूब डरी, नहीं डॉक्टर साहब ऑपरेशन नहीं, बिना ऑपरेशन के साथ नहीं हो सकता है क्या। फिर उसने बहुत अच्छी से समझाया किया, फिर मेरा मन बन गया, उसके प्रति आस्था बैठ गई कि जो भी करेगा। फिर मैंने क्या किया, सब कुछ चलाना बंद कर दिया और समर्पण कर दिया अपने आप को। समर्पण कर दिया तो उसने काम कर लिया अपना। समझ में आया क्या होती है स्थिरता? इतना समर्पण, तभी एक शब्द आता है समर्पण के बदले शरणागति। लोग आते हैं ना शरणागति में, दूसरे देश के लोग अपने देश में, तो उसको यही बोलते हैं ना शरणागति में आए हैं। तो जो शरणागति में आता है ना, तो वो गति करते हुए अपने देश की बाउंड्री से हमारी देश की बाउंड्री में आया है। अब जब हमारी शरण में आ गया ना, अभी उसको कुछ सोचना नहीं है, वो तो इसी फेथ पे आया है कि ये मुझे मेरी जो नेसेसिटी फुलफिल करेंगे। इसलिए उसको नहीं बोलना है कि मुझे पानी दो और मुझे ये दो, वहां की सरकार अपने आप ऐसे ही मैं शरणागति हो जाऊं, अर्थात इस दुनिया की बाउंड्री को पार करके उसकी दुनिया की बाउंड्री में प्रवेश कर जाऊं और समर्पित हो जाऊं। जो कुछ करना है उसको पता है इसको क्या चाहिए, वो आपके लिए करेगा। ये है सच्ची शरणागति। और ऐसी शरणागति में ही वो जो कहा सर्व धर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज, तब जाके मैं तुम्हें तुम्हारे पापों से मुक्त करूंगा, तुम निश्चिंत रहो, डरो नहीं। तो ऐसा वाला योग पूरा शाम को एक घंटा है आपके पास अभ्यास करना, और अभी भी करते हैं, ठीक है। ओम शांति।
तुमको निहारने को दिल ये चाहता है, प्रभु तुमको निहारने को दिल ये चाहता है, मन में उतारने को दिल ये चाहता है।
शरीर का नाम इंदिरा बहन है और 1987 में घर बैठे बाबा का ज्ञान मिला था। घर बैठे ही अव्यक्त वाणियों की स्टडी की बिफोर 7 डेज कोर्स। कुमारियों के प्रति बाप दादा की अपेक्षाएं ये सब बिना साकार मुरली बिना 7 डेज कोर्स पहले से ही पढ़ रहे थे हम। और 7 डेज कोर्स की किताब थी उसमें, मतलब जो हम जाके करते हैं 7 डेज कोर्स ऐसा कहीं नहीं किया, घर बैठे ही। और वो जो 7 डेज कोर्स की किताब हम पढ़ रहे थे, क्योंकि भक्ति मार्ग में हम भगवान से ये कहते थे कि आप जो भी हो जैसे भी हो वो मुझे बताओ कि आप हो कौन, ये संसार कैसे चलता है, हम क्यों आए, मतलब जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो सारे मैं उनको कहती थी। और मैं कहती थी यकीन मानो अगर आपने मुझे बताया ना, मैं दुनिया को एक साइड रखूंगी और तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगी। फिर तो 7 डेज कोर्स की जब किताब पढ़ी मैं कहती यही तो मैं ढूंढ रही थी। और मैंने कोई दादियां नहीं देखी, कोई सेंटर नहीं देखा, कोई दीदियां नहीं देखी, कोई हेडक्वार्टर का कुछ आता नहीं पता नहीं, बस उसको पढ़ के मैंने डिसाइड किया यही तो मैं चाह रही थी और मेरा जीवन अब इस रास्ते पर रहेगा। और फिर तो जैसे कि ये ज्ञान बिल्कुल ही अलग है और माता पिता की सबसे बड़ी कंसर्न होती है कि बच्ची शादी करके चली जाए फिर जो करना है करे, तो उस बहाने अटक आती है, लेकिन वो भी पार करके पहली बार 1994 में, ज्ञान 87 में, 1994 में पहली बार बाबा को मिलने आए ओम शांति भवन में। और उसके बाद फिर कोई ऐसा साल नहीं रहा जब हम मधुबन में नहीं हो, मतलब सेवा में 2-3 साल आए और उसके बाद 1998 से हमें इस पार्क में सामने से ऑफर मिला, मीटिंग भी अटेंड की और फिर सेवाएं करने का भी अवसर मिला। तो 98 से लेकर 5 वर्ष वहां हमने पूरी सेवाएं की ज्ञान सरोवर में। और उसी दरमियान मनोबल एवं मनसा सेवा, इतनी मोटी किताब है मैं शाम को दिखाऊंगी, वो लिखने का बाबा ने सौभाग्य दिया है तो मुरलियां ही, जस्ट कलेक्शन है वो, और वो एक निमित्त बहाना बना मुझे ज्ञान सरोवर में सेवा का अवसर पाने का। तो वहां से हमारी समर्पित जीवन आरंभ हुई 1998 से, और फिर तो जैसे कहते हैं मैं नागपुर सेवा सब जोन को बिलोंग करती हूँ। बंधन तो थे सेवा के नाम पर, ऐसे हमने बंधनों को क्रॉस किया। तो नागपुर की दीदी हमें कहे, अब तो आप इतना रहते हो, कौन कहता है तुम्हारे को बंधन है, तो आप चूंकि नागपुर की हो तो चलो वहां चल के रहो। फिर हम वहां रहे 2 साल, लेकिन फिर हम चूंकि स्पार्क से जुड़े हुए थे तो उषा बहन और रमेश भाई से जुड़े हुए थे, और उनको पता है कि एक बार सेवा केंद्र पे चले जाने के बाद जो स्पार्क की इस प्रकार की हमने सेवाएं की थी वो नहीं हो पाती है, फिर कहा आप इधर आ जाओ हमारे पास। तो हम उनके पास चले गए गामदेही में, पर चाहे उनका सेवा केंद्र हो चाहे वो जो स्पार्क में सेवा, वो सेवा केंद्र पे कुछ अलग ही हो जाता है। खैर उनके पास भी 4 साल रहे, और फिर बाबा ने फिर चूंकि गए तो यहां से थे, बाबा ने फिर एक अवसर दिया 2009 में। जब हम यहाँ आए तो हम पुनः वापस गामदेवी सेंटर में थे उषा बहन के पास, तो वहाँ नहीं गए, और बाबा ने यहाँ हमारे लिए द्वार खोल दिए, शीलू दीदी का ऑफर मिला और हम तब से यहाँ रह रहे हैं और उनकी सेवाओं में अपना सहयोग दे रहे हैं। तो 1998 से 2023 समर्पित जीवन के पूरे 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। कुछ वर्ष ज्ञान सरोवर, कुछ वर्ष नागपुर, कुछ वर्ष गामदेवी, और अब यहाँ पर पांडव भवन में आप सबकी सेवाओं में उपस्थित रहते हैं। ओम शांति।